नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। ब्रिक्स नेताओं ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और इसके सभी रूपों तथा अभिव्यक्तियों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कहा, आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा, बिहार में मतदाताओं के सहयोग से मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण जारी। अमेरिका में टेक्सास में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 80 हुई। कतर में इसराइल और हमास के बीच अप्रत्यक्ष युद्ध विराम वार्ता का पहला दौर बिना किसी समझौते के समाप्त। भारत एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 336 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर। और हरविंदर सिंह ने बीजिंग में एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्राजील के रियो दे जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की गई। ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवादियों की सीमा पर आवाजाही, उनके वित्त पोषण और सुरक्षित ठिकानों सहित सभी रूपों तथा अभिव्यक्तियों में आतंकवाद से निपटने के लिए भी अपनी वचनबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को मानवता के समक्ष सर्वाधिक गंभीर चुनौती बताया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के शिकार लोगों और इसे शह देने वालों को एक स्तर पर नहीं रखा जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने में कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान आतंकवाद की गंभीर समस्या पर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया। शांति और सुरक्षा के विषय पर चल रहे चर्चा में भाग लेते हुए पहलगाम आतंकवादी घटना को कड़े शब्दों से निंदा करने पर उन्होंने ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रों के नेताओं का धन्यवाद किया। उनका कहना था कि पहलगाम घटना भारत की आत्मा, पहचान और सम्मान पर घातक हमला था। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल भारत पर किया गया हमला नहीं था, बल्कि पूरे मानवता पर किया गया प्रहार था। आतंकवाद की बर्बरता पर जीरो टॉलरेंस की मांग करते हुए उन्होंने सूचित किया कि आतंकवादी संगठनों पर कड़ी पाबंदी लगाई जानी चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारत हमेशा संवाद और राजनीतिक मार्गों द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय मसलों के समाधान पर अमल करेगा, जिससे वैश्विक शांति बनी रहे। अंत में प्रधानमंत्री ने सभी ब्रिक्स सदस्यों को अगले साल भारत के आतिथ्य में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन को स्वागत किया। आकाशवाणी समाचार, रियो डी जेनेरो, ब्राजील।
प्रधानमंत्री ने आज ब्रिक्स साझेदार देशों के साथ बहुपक्षवाद, आर्थिक वित्तीय मामलों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित संपर्क सत्र में भाग लिया। श्री मोदी ने अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुध्रुवीय विश्व के लिए उत्प्रेरक के रूप में ब्रिक्स के महत्व पर बल दिया। उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा संचालित परियोजनाओं में मांग आधारित दृष्टिकोण और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता का आग्रह किया। श्री मोदी ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियास कैनल बार्मोडेस से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने बहुध्रुवीय और समावेशी विश्व व्यवस्था पर बल दिया है। शिखर सम्मेलन के पहले सत्र में उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत वैश्विक संस्थाओं में व्यापक सुधार के साथ होनी चाहिए और ऐसे उपाय केवल सांकेतिक नहीं होने चाहिए, बल्कि उनका वास्तविक प्रभाव भी दिखना चाहिए। श्री मोदी ने प्रशासनिक व्यवस्था, मताधिकार और नेतृत्व क्रम में बदलाव की अपील की। उन्होंने नीति निर्माण में अल्प विकसित और विकासशील देशों को उच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनेक देश ऐसे हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद निर्णय प्रक्रिया में समुचित स्थान से वंचित हैं। श्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व स्वास्थ्य संगठन और बहुपक्षीय विकास बैंक जैसी वैश्विक संस्थाओं में सुधार का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघशी और मैक्सिको के विदेश मंत्री जुआन रामोन डे ला फुएंते से भी भेंट की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में नियंत्रक सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। रक्षा लेखा विभाग ने 3 दिन के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन के दौरान 8 कार्य सत्र होंगे, जिनमें बजट और लेखा सुधार, आंतरिक लेखा संरचना, सहयोगपूर्ण शोध, मूल्य निर्धारण में नवाचार तथा क्षमता निर्माण जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्रालय ने आर्थिक संबंध मामलों के सचिव दम्मू रवि ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का तेजी से बदलते वैश्विक घटनाक्रमों में अत्यंत महत्व है। ब्राजील के रियो द जेनेरियो में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने से शिखर सम्मेलन का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि भारत अगले वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का कार्य मतदाताओं के सक्रिय सहयोग से सुचारू रूप से चल रहा है। चुनाव आयोग ने एक बयान में बताया कि पुनरीक्षण का प्रारंभिक चरण लगभग पूरा हो चुका है और सभी पात्र मतदाताओं को फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
चुनाव आयोग को अभी तक 1,69,00,000 से अधिक गणना फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। फॉर्म अपलोड करने का काम भी शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण 24 जून को जारी निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है और निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। निर्देशों के अनुसार 1 अगस्त को जारी होने वाली मतदाता सूची के प्रारूप में उन व्यक्तियों के नाम होंगे जिनके गणना फॉर्म प्राप्त हुए हैं। मतदाता 25 जुलाई से पहले कभी भी अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। मतदाता सूची का प्रारूप जारी होने के बाद यदि कोई दस्तावेज कम है तो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी दावा और आपत्ति अवधि में जांच के दौरान उन मतदाताओं से ऐसे दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं जिनका नाम मतदाता सूची के प्रारूप में है। 77,895 बूथ अधिकारी मतदाताओं को उनके गणना फॉर्म भरने और उन्हें एकत्र करने में मदद करने के लिए घर घर जा रहे हैं। मतदाताओं की लाइव तस्वीरें लेकर उन्हें अपलोड किया जा रहा है। सुपर्णा और भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार के समस्तीपुर में 17 करोड़ रुपए से अधिक की निर्माण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सोनपुर रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक रोशन कुमार ने बताया कि रेल मंत्री 3,30,00,000 रुपए की लागत से करपुरी ग्राम स्टेशन के उन्नयन कार्य की आधारशिला रखेंगे। वे स्टेशन के पास लेवल क्रॉसिंग पर 14 करोड़ रुपए की लागत से अंडरपास की भी आधारशिला रखेंगे। इसराइल और हमास के बीच कतर में संघर्ष विराम वार्ता का पहला दौर बिना किसी समझौते के समाप्त हो गया है। फलस्तीनी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। कतर के दोहा में हुई वार्ता का उद्देश्य संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई पर किसी कारगर समझौते तक पहुंचना था। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के वॉशिंगटन रवाना होने से ठीक पहले संघर्ष विराम पर बातचीत फिर शुरू हुई थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि इसराइली वार्ताकारों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि संघर्ष विराम समझौता इसराइल को स्वीकृत शर्तों पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति के साथ उनकी बातचीत से अधिक बंधकों की रिहाई और गजा में संघर्ष रोकने के समझौते तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इस बीच इसराइल ने कल देर रात यमन के पश्चिमी होदे इदाह प्रांत में लाल सागर बंदरगाहों पर लगातार कई हवाई हमले किए। हाल के महीनों में इसराइल ने यमन के प्रमुख बंदरगाहों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। हुती विद्रोहियों का भी इसराइल की ओर मिसाइलें दागना जारी है। अमेरिका के टेक्सास में पिछले शुक्रवार को आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 80 हो गई है। ग्वाडालूप नदी के पास कैंप मिस्टिक से लापता 11 लड़कियों और एक काउंसलर की तलाश जारी है। रविवार तक 850 से अधिक लोगों को बचाया गया है। टेक्सास के गवर्नर ने सभी लापता लोगों की तलाश और खोज अभियान जारी रखने की बात कही है। सूरीनाम की संसद ने कल जेनिफर साइमंस को देश की पहला महिला राष्ट्रपति चुना है। सूरीनाम के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आम चुनाव के बाद नेशनल असेंबली के सदस्य राष्ट्रपति के लिए मतदान करते हैं। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से आज तड़के 8,605 श्रद्धालुओं का छठा जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच श्री अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। इनमें से 3,486 श्रद्धालु बालतल मार्ग से और 5,119 श्रद्धालु पहलगाम मार्ग से पावन गुफा तक की यात्रा करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह बारिश होने से गर्मी से हल्की राहत मिली। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उधर हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की तेज वर्षा से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 20 जून से सक्रिय दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के कारण राज्य में मूसलाधार बारिश से भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हुई हैं।
हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में सर्वाधिक 110 मिलीमीटर वर्षा हमीरपुर जिला के अघार में दर्ज की गई। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं के चलते प्रदेश में अभी भी 243 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 241 बिजली ट्रांसफार्मर और 278 पेयजल योजनाएं भी बंद पड़ी हैं। प्रदेश में अब तक 163 मकान पूरी तरह और 178 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 8 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट और चंबा व कुल्लू जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
बर्मिंघम के एजबेस्टन में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने कल रात मेजबान इंग्लैंड पर 336 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज की।
एजबेस्टन हमारा है, बंद मुट्ठियां खोल दी, फजा में रंगत गोल दी, एजबेस्टन की ईगो तोड़ी, जीत से नाता जोड़ा है, भारत माँ के वीरों ने इंग्लैंड को क्या फोड़ा है।
5 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। इस मैदान पर भारत की यह पहली टेस्ट जीत है। बारिश के कारण 5वें दिन का खेल 100 मिनट की देरी से शुरू हुआ, लेकिन भारत के गेंदबाज मेजबान टीम के शेष 7 विकेट लेने में सफल रहे। आकाशदीप ने मैच में 10 विकेट लिए, गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दोनों टीमें अब इस महीने की 10 तारीख से लॉर्ड्स में शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट में आमने सामने होंगी। इस बीच बीजिंग में एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में हरविंदर सिंह ने 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत चीन के बाद पदक तालिका दूसरे स्थान पर है। भारत ने 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। वहीं महिला कंपाउंड टीम में भारत की शीतल देवी और ज्योति ने भी चीन की लू झांग और जिंग झाओ को हराकर स्वर्ण पदक जीता। उधर कजाकिस्तान के अस्ताना में विश्व मुक्केबाजी कप में भारतीय महिला ओलंपियन जैस्मीन लांबोरिया, साक्षी और नुपुर ने अपने अपने भार वर्गों में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही भारत ने 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। और विंबलडन टेनिस में यूकी भांबरी आज अपने अमरीकी जोड़ीदार रॉबर्ट गैलोबे के साथ पुरुष डबल्स के तीसरे दौर में खेलेंगे। भांबरी एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जो अभी भी प्रतिस्पर्धा में बने हुए हैं। प्रतियोगिता के गत चैंपियन कार्लोस अल्काराज और आर्याना सवालेंका क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की डिजिटल क्रांति, सेवाओं में सुधार और सरलीकरण विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री रमेश कृष्णमूर्ति परिचर्चा में भाग लेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना।
धन्यवाद निखिल। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन अखबारों के पहले पन्ने पर है। जनसत्ता और राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा आतंक पर कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। दैनिक ट्रिब्यून के शब्द हैं आतंकवाद से निपटने में ब्रिक्स भारत के साथ। दैनिक जागरण लिखता है पहलगाम हमला बेहद निंदनीय, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस जरूरी। हरिभूमि की खबर है आय समानता के मामले में भारत का नया कीर्तिमान, 17 करोड़ भारतीय अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले। वीर अर्जुन, हिंदुस्तान और हरिभूमि के अनुसार एलन मस्क ने अमेरिका में बनाई नई राजनीतिक पार्टी, कहा अमरीकियों को उनकी आजादी वापस दिलाऊंगा। पंजाब केसरी की ने अनुमान लगाया है जल्द मिलेगा भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, रेस में 6 चेहरे। देशबंधु के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा ने बचत खातों में न्यूनतम राशि नहीं रखने पर लगने वाले शुल्क को माफ किया। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है शहरों में बढ़ा महंगे ई वाहनों का क्रेज, सबसे महंगी गाड़ी 2.5 करोड़ की पंजीकृत हुई। भारत की टेस्ट क्रिकेट में विदेशी सरजमी पर सबसे बड़ी जीत, दैनिक भास्कर की पहली सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं पहली बार बर्मिंघम में दी इंग्लैंड को मात। अमर उजाला ने लिखा है भारत ने इतिहास रचकर इंग्लैंड को 336 रन से हराया।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और इसके सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कहा आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा बिहार में मतदाताओं के सहयोग से मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण जारी। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 हुई। कतर में इसराइल और हमास के बीच अप्रत्यक्ष युद्ध विराम वार्ता का पहला दौर बिना किसी समझौते के समाप्त। भारत एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 336 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।